الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل. ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے شرکا کو مرحبا کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کفن چوروں کے انکشافات کے صفحہ نمبر ایک پر نقل کرتے ہیں. خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو درود پاک روز ہی پڑھنا چاہیے، مگر جب شب جمعہ آئے، جمعہ کا دن آئے، جمعہ رات کا مبارک دن آئے، درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنائیے. الحمدللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں ہم بے فاسد کے بارے میں سنیں گے. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ آپ سے بے فاسد کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں. سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ایک بے کی جو دوسری قسم ہے بے فاسد، اس کا کیا حکم ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے فاسد کا حکم بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ باطل اور فاسد کے درمیان فرق کیا ہے.
جی،
کہ بے باطل وہ ہوتی ہے جس کی حقیقت ہی نہیں پائی جاتی، یعنی ایک چیز مال ہی نہیں اسے بیچ دیا، اپنی ملک ہی میں نہیں اسے بیچ دیا، یعنی بے کی جو بنیادی چیزیں وہی نہیں پائی جاتی. اگر بے کی بنیادی باتیں پائی جائیں لیکن اس کے کسی وصف میں کوئی خرابی ہو، یوں سمجھیے جزوی طور پر خرابی ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو ایسی بے کو بے فاسد کہتے ہیں.
لفظ بے کو تھوڑا واضح کر دیں کہ بے کس کو کہتے ہیں.
خرید و فروخت کرنے کو بے کہا جاتا ہے. ویسے تو بے کا مطلب ہے بیچنا، بیچنے پر بھی اس لفظ کو بولا جاتا ہے، خریدنے پر بھی، لیکن ہم جو استعمال کریں گے اور عرف عام میں جو استعمال ہوتا ہے خرید و فروخت پر، بزنس ڈیل پر یہ لفظ استعمال ہوتا
صحیح.
ہے
جزاک اللہ.
تو جب کسی بزنس ڈیل کے اندر وہ باتیں نہ پائے جائیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، کسی وصف میں کمی ہو، تو اسے بے فاسد کہتے ہیں.
صحیح.
بے فاسد کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بے فاسد کر لے تو اب کیا حکم اس پر عائد ہوگا؟
صحیح.
بے فاسد گناہ ہے.
صحیح.
شریعت نے اس سے منع کیا ہے، تو ایسی بے سے بچنا ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ اس کا شرعی حکم ہے.
ٹھیک ہے.
اب اگر بے فاسد ہو جاتی ہے تو کیا ثمرات اور کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟
ٹھیک ہے،
یہ بھی ایک تفصیل طلب بات ہے. یوں سمجھیے کہ خرید و فروخت کا اصل مقصود ہوتا ہے حصول ملکیت. تو عام خرید و فروخت کے اندر جو فاسد نہ ہو، محض ڈیل کے ذریعے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے.
صحیح.
ایجاب و قبول ہوئے، بزنس ڈیل ہوئی، ملکیت حاصل ہو گئی.
صحیح.
یہ بے فاسد چونکہ ایک کمزور بے ہے، اس میں اس وقت تک ملکیت حاصل نہیں ہوتی جب تک خریدی ہوئی چیز اپنی کسٹڈی میں نہ لے لی جائے.
صحیح.
قبضے سے پہلے ملکیت ثابت نہیں ہوتی،
بے فاسد میں نہیں ہوتی.
بے فاسد میں نہیں ہوتی.
صحیح.
قبضہ ہونے کے بعد ہوگی. اس سے پہلے کوئی ایک فسق کر دے، اس سودے کو رد کر دے، کینسل کر دے، تو سودا ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
اسی طریقے سے अब सौदा हो गया तो शरण फरीकेन पर वाजिब है कि इसे ख़त्म करें,
अच्छा
इस डील को कैंसिल करें। जो शरीयत के तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए, ख़राबी को दूर करते हुए, अज़सरे नो इस डील को करें।
सही,
अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बे फासिद के ज़रिए जो चीज़ आपने ख़रीदी उसे इस्तेमाल करना गुनाह,
अच्छा
उसमें किसी किस्म का तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, बल्कि उस चीज़ को बेचकर जो नफ़ा हासिल होगा वो नफ़ा भी हराम का होगा,
अल्लाह,
हलाल नफ़ा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई माल ख़रीदा 1,000 रुपये का बे फासिद के ज़रिए, उसके बाद वो माल 1,500 रुपये का बेच दिया। अब जो 500 रुपया नफ़ा हासिल हुआ उस चीज़ को बेचने पर, तो ये नफ़ा मिलके खबीस है, वाजिब तसद्दुक है, इसे सदका करना वाजिब है, उस नफ़े को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो हलाल नहीं है। ये हुक्म था, यानी ख़रीदने वाले ने चीज़ ख़रीदी, उस चीज़ को आगे बेचा, उससे जो नफ़ा कमाया वो नफ़ा मिलके खबीस। तो कोई भी सौदा दो फरीक के बगैर नहीं होता, एक ख़रीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है।
सही,
ये जो हुक्म बयान किया हमने ये ख़रीदने वाले के एतबार से बयान किया। अब बेचने वाले को ज़ाहिर बात है अपनी चीज़ बेचकर रकम हासिल हुई, इस रकम का क्या हुक्म है? अगर ये इस रकम से आगे कारोबार करता है क्या वो हलाल है या नहीं है? तो फुकहा ने यह बयान किया, ये रकम अगर ये इस्तेमाल करता है तो इसमें जो खुब्स का हुक्म है, हराम होने का हुक्म है, वो जारी नहीं होगा।
ठीक,
इफादा मिल्क तो हो जाता है, मिल्कियत तो उसे हासिल हो गई, इस मिल्कियत से अगर ये नफ़ा भी कमाता है, इस रकम से कोई और कारोबार करता है, तो रकम के अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल वजूहात पाई जाती हैं कि जो खबासत है वो आगे मुंतकिल नहीं हो सकती। बेचने वाले ने जो रकम हासिल की इस बिज़नेस डील से जो फासिद है, तो उस रकम को कारोबार में लगाया, उस कारोबार से जो नफ़ा हुआ वो हलाल,
लेकिन ये काम तो गुनाह था
काम
दोनों
गुना,
के लिए।
काम गुना था। लेकिन जो बेचने वाला है उसने जो माल ख़रीदा है उस माल के अंदर जो है हुरमत जारी हो जाएगी।
सही,
हाँ, अगर बाटर सिस्टम पर बे हुई है, दोनों ही ने माल ख़रीदा, इसने भी माल दिया
माल के
उसने भी
बदले
माल
माल
दिया,
ले लिया।
किसी तरफ रकम नहीं है, करेंसी नहीं है या सोना चांदी नहीं है, तो वहाँ जो है बाटर सिस्टम पर अगर बे हुई है तो फिर दोनों तरफ एक ही हुक्म होगा कि बेचने वाला भी उस माल के ज़रिए अगर कुछ नफ़ा कमाता है तो वो नफ़ा उसके लिए हराम होगा।
अल्लाह
ये
अकबर।
इसका हुक्म, इसका समरा और इसका नतीजा है।
कारोबारी हजरात या जो लोग जो बिजनेस करते हैं या खरीदो फरोख्त का मामला तो हर शख्स को पेश आता है, तो हमें पता चला कि बेफासिद जो है उसका हुक्म बहुत सख्त है, और बाज़ औक़ात तो उसकी जो रोज़ी है या जो मामलात हैं वो गुनाह में भी बंदा मुबतला हो सकता है। तो तवज्जो के साथ इस सिलसिले में शुरू से आखिर तक शरीक रहिएगा। अब इंशाल्लाह हम हमारे दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई से बेफासिद के ऐसे कौन से असबाब हैं, कैसे कौन सी आदात या आमाल हैं जिसके सबब से इंसान जो है वो बेफासिद में मुब्तला हो जाता है। हुजूर हमारी रहनुमाई फरमाएं कि किस अंदाज से बेफासिद होती है आज के ज़माने में बिलखुसूस।
बे फासिद के बहुत सारे असबाब हैं, यानी वो वजूहात कि शरीयत ने जिनसे रोका है और अगर उनका कोई इर्तिकाब करे तो बे फासिद लाजिम होती है। सिलसिला ब सिलसिला हम तरतीबवार उन असबाब को गिनवाते चले जाएंगे और हर एक सबब पर तफसीली गुफ्तगू होगी।
इंशाअल्लाह,
एक सबब है किसी भी बिज़नेस डील के फासिद होने का, गैर शरी होने का, वो ये है कि जिस चीज़ को बेचा गया है, डील हो गई, वो चीज़ बेच दी गई, लेकिन बेचने के बावजूद ख़रीदने वाले को डिलीवरी नहीं दी गई और ना ही डिलीवरी देना मुमकिन है। यानी वो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल है कि उसको वो चीज़ सुपुर्द की ही नहीं जा सकती, उसके हवाले करना मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी के पास गाड़ी थी, वो गाड़ी चोरी हो गई, चोरी होने के बाद उसे ख्याल आया कि मेरे जो फलां जानने वाले हैं उनके बड़े ताल्लुकात हैं, अगर ये गाड़ी मैं उनको बेच दूँ वो खुद ही निकलवा लेंगे।
अच्छा
अब गाड़ी पता नहीं कहाँ है, उसकी डिलीवरी मुमकिन ही नज़र नहीं आती। अगर किसी चीज़ को बेचा गया और उसका कब्ज़ा दिया जाना मुश्किल है, दुश्वार है, मुमकिन नहीं है, यानी यूँ समझिए कि वो माल जो बेचा गया मकदूर तस्लीम नहीं है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में बे करना गलत है, ऐसी बे फासिद होगी कि
अल्लाह,
जिसमें बेची जाने वाली चीज़ का सुपुर्द करना दुश्वार हो।
इसमें तो हुजूर जैसे कोई प्लॉट होता है या कोई मकान होता है, उस पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, अब लोग कहते हैं हम कागजात बेच देते हैं आपको, कब्ज़ा आप खुद छुड़वा लीजिएगा, तो ये भी उसी में आएगी।
ये तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे। एक तबका वो होता है जो अपने ज़बरदस्ती की बुनियाद पर, बदमाशी की बुनियाद पर काम ही ये करता है।
सही,
तो बेचने वाले ने जो प्लाट बेचा और उसका कब्ज़ा देना मुमकिन ही नहीं, उस पर कब्ज़ा हुआ हुआ है, लोग बैठे हुए हैं
सही,
या गवर्नमेंट कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो ऐसी बिजनेस डील भी सही नहीं है।
अच्छा,
यानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हर चीज़। जो ख़रीद रहा है उसे उससे नफ़ा तो हासिल हो, वो ख़रीदने के बावजूद भी 50 साल तक मतलब ख्वार होता रहे और उस चीज़ से फ़ायदा ना उठा सके, तो ऐसे डील का क्या
लेकिन
हासिल।
हुजूर ये तो बाहमी रजामंदी से होता है ना, बेचने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है, तो फिर क्या एतराज़ है?
असल चीज़ है किसी चीज़ के मकासद, खरीदो फरोख्त के जो मकासद हैं वो है इफ़ादा मिल्कियत, मिल्कियत का हासिल होना, और मिल्कियत हासिल होने का फ़ायदा ये होता है कि उस चीज़ से नफ़ा उठाना। जब तमाम सिलसिले से गुजरने के बावजूद, खरीदो फरोख्त करने के बावजूद फ़ायदा ही नहीं उठा सकते, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी बिजनेस डील
लेकिन
का।
हुजूर देखे ना, अब इस तरह के जो मकानात हैं, प्लॉट हैं, आपने गाड़ी का जिक्र किया, तो ऐसा बजायर लगता है कि लेने वाले को तो गुमान गालिब होता है कि मैं ये जरा गड़बड़ वाली डील कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसमें बहुत फायदा होगा, तो वो तो खुशी से कर रहा है, फिर क्या हर्ज है?
देखिए, बे की बुनियादी बातें तो पाई जा रही हैं, इसलिए हमने इसको बातिल नहीं कहा। ये बे फासिद है,
ठीक है,
जुज़वी खराबी मौजूद है। जब तक ये खराबी मौजूद रहेगी, फसाद तो बरकरार रहेगा।
सही
फसाद का मतलब क्या है? बिगाड़।
सही,
यानी जो मकसूद है वो पूरी तरह हासिल ही ना हो पाए, तो वो फसाद तो बरकरार है।
सही
अब आप देखिए, जो लोग इस तरह डील करते हैं, लाजमी तो नहीं है कि उस पर कब्ज़ा भी छुड़वा लें,
सही, नुकसान भी
साला
होता है।
नुकसान भी होता है। तो शरीयत का मकसूद एक ये है कि फसाद से बचाना, दूसरा ये है कि धोखे से बचाना,
माशाल्लाह,
गरर से बचाना। तो जहाँ ये बातें पाई जाएंगी वहाँ पर बेफासिद होगी।
सही सही हुजूर, ये इरशाद फरमाया चोरी का माल भी बड़ा बिकता है।
पता हो कि जो शख्स बेचने आया है ये इसकी चीज़ नहीं है,
सही,
चोरी की चीज़ है, गसब की चीज़ है, इसका ये मालिक नहीं है। जब आपको यकीन हो कि जो माल बेच रहा है ये चोरी का है, शवाहिदात हो, यकीन हो, तो उससे वो माल ख़रीदना हराम है, और उस माल को इस्तेमाल करना, उससे फ़ायदा उठाना हराम है। बल्कि अगर ये ज़न्ने गालिब हो, यकीन ना हो अगरचे के उससे नीचे आ जाएं, मिसाल के तौर पर उलमा ने एक मिसाल बयान की कि एक शख्स आया है और वो एक किताब लेकर आया कि जी ये मेरे वालिद साहब पढ़ा करते थे और ये किताब मैं बेचना चाहता हूँ। पता ये चला कि इसके वालिद तो जाहिल थे, कभी उस किताब से कोई ताल्लुक उनका नहीं रहा, ये किताब इसके पास कहाँ से आ जाएगी। तो एक खदशा है, ज़न्ने गालिब है कि ये चीज़ जो बेचने आया है और अपने वालिद की तरह मंसूब कर रहा है, इसके वालिद की नहीं है, ये कहीं से चुरा कर लाया होगा। जैसा कि हमारे यहाँ हैरूनी और नशेई जो लोग होते हैं वो बड़ी कीमती चीज़ें लेकर आए होते हैं, बसा अवकात सुनारों के पास पहुँचते
मोबाइल बेच
हैं,
रहे होते हैं।
सुनारों के पास पहुँचते हैं, जेवर लिया हुआ उन्होंने,
जी,
पता है कि ये जेवर तो इसका हो ही नहीं सकता, ये इतनी कम उम्र है। तो अगर ज़न्ने गालिब है तब भी ऐसे माल का ख़रीदना हराम है, और अगर ख़रीदने के बाद यकीन ही हो जाए, पता ही चल जाए, यानी किसी ने ख़रीदा, ना ज़न्ने गालिब था ना यकीन था, एक आम हालात थे, लेकिन बाद में पता चल गया कि जनाब ये तो चीज़ इसकी है, अब भी असल मालिक तक पहुंचाना वाजिब होगा। मालिक नहीं मिलते, उनके वर्षा तक पहुंचाना वाजिब होगा, वर्षा भी नहीं मिलते तो ये शेर लुकते के हुक्म में है, इसको सदका करना ज़रूरी है।
इसका क्या कसूर है? इसने तो खरीदी है, पैसे भी दिए हैं, फिर भी इसको सदका करना होगा या मालिक तक पहुंचाना होगा?
देखिए, बात यह है कि एक निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर जब तक हम एक दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे उस वक्त तक निज़ाम कायम नहीं रह सकता। बस अवकात इंसान को कुर्बानी भी देनी पड़ती है।
सही,
ये नहीं है कि आपका किसी ने माल हड़प कर लिया तो आप दूसरे का हड़प कर लें, वो मामला नहीं है कि जी बड़ी मछली छोटी मछली को और वो मछली अपने से छोटी मछली को हड़प करे, ये तो फसाद है, दरिंदगी है, इंसानियत नहीं है, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता।
बाज़ औक़ात माल बेचने कोई शख्स आता है, बड़ा सस्ता माल दे रहा होता है, मार्केट का रेट कुछ और होता है, वो मार्केट से बहुत सस्ता दे रहा होता है, तो अब क्या उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, मालूमात की जाएगी, कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा?
देखिए, आपको मतलब कि सिर्फ शुबा है और दोनों तरफ जो है वो बराबर हैं, हो सकता है इसका अपना हो सकता है किसी ने भेजा हो, और हो सकता है कि मतलब कि चोरी का हो। या तो यकीन हो या जन्ने गालिब हो, जब दोनों बातें पाई जाएंगी तो हराम होने का हुक्म आयद होगा। सिर्फ शुबे पर हराम होने का हुक्म आयद नहीं होगा। लेकिन एक बात और है कि असल जो मकसूद है हमारी गुफ्तगू का या शरीयत के कानून का या अमल करने का असल मकसूद है आखिरत का खौफ, अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बचना और
माशा
हराम
अल्लाह
चीज़ से बचना।
माशा अल्लाह
तो असल एहतियात है हराम से बचने में।
माशा अल्लाह
तो एहतियात का पहलू तो यही है कि जब आपको शुबा भी है तो आप उससे दूर भागें,
सही
ना ख़रीदें। गैर मकदूर तस्लीम होने के हवाले से मज़ीद भी मिसालें फुकहा ने बयान की।
जी
मिसाल के तौर पर किसी ने छत में लगा हुआ गार्डर बेच दिया, छत पड़ी हुई है उसमें गार्डर लगा हुआ है, शहतीर लगा हुआ है, जनाब ये गार्डर मैंने आपको भेजा। अब वो गार्डर निकालना मुमकिन ही नहीं, उसके लिए
सही
काबिल तस्लीम ही नहीं है, तो ये बेबी फासिद। इसी तरीके से किसी के पास कोई परिंदा है जो उसका अपना ज़ाती मिल्कियत में उसके है और वो आसमान पर उड़ रहा है, अगर तो वो परिंदा ऐसा है कि शाम को वापस आ जाता है, जैसे कि कबूतर होते हैं
जी जी
जो लोग पालते हैं वो शाम को वापस आ जाते हैं उड़ने के बाद, वो हिले होते हैं, सुधाए हुए होते हैं, अगर तो वैसा है कि शाम को उसने वापस आ जाना है, तब तो ज़ाहिर बात है सुपुर्दगी और डिलीवरी मुमकिन है, कोई हर्ज नहीं है। आसमान पर है अगरचे के वक्ते ख़रीदो फरोख्त ज़मीन पर नहीं है, उसको बेचना जायज़ है। लेकिन अगर वो परिंदा ऐसा है कि सुधाया हुआ नहीं है, हिला हुआ नहीं है, वापस नहीं आएगा, बेचने वाले ने ख़रीदने वाले के ज़िम्मे डाल देना है कि बस मैंने तुम्हें बेच दिया, अब इसको पकड़ना तुम्हारा काम है, तो यहाँ भी डिलीवरी मुमकिन नहीं। इस बिना पर ये बेबी, ये सौदा भी फासिद होगा, गैर शरी होगा।
इन तमाम बातों से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों फरीकैन में, मुसलमानों में कहीं इख्तलाफ ना हो, कोई झगड़ा ना हो जाए, उससे बचाया जा रहा है।
कई बातें, सिर्फ
जी
झगड़ा नहीं है, एक तो ये है कि झगड़ा ना हो, एक ये कि किसी एक का नुकसान ना हो।
माशाल्लाह
अब वो
माशाल्लाह
परिंदा आसमान में, वो जनाब बाज है और वो थोड़ी देर के तो नज़र आया, उसके बाद ज़िंदगी में नज़र ही नहीं आया, इसने जो ख़रीदा अपने पैसे दिए इसको तो कुछ भी नहीं मिला।
सही
तो
सही
गरर से बचाना,
माशाल्लाह
फसाद बिगाड़ से बचाना, आपस के तनाज़ात से बचाना, ये रूह है बेफासिद से बचाने की।
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, यानी इस्लाम के इन कवानीन पर अमल किया जाए तो कितने सारे दीगर मसाइल हल हो जाते हैं,
देखिए
अल्हम्दुलिल्लाह।
इस्लाम झूठ से मना करता है, आप झूठ के कितने मफासिद हैं।
सही
बसा
बात
औकात इंसान को अमल करते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ता है और सवाब दिक्कत ही पर रखा गया है,
वाह
मशक्क़त ही
सुभानअल्लाह
पर सवाब है,
सुभानअल्लाह
मशक्क़त में पड़ेंगे तो सवाब मिलेगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मज़ीद हुज़ूर अगर बेफासिद के हवाले,
बेफासिद के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़राबी है किसी शर्त फासिद का लगाना, यानी ऐसे टर्म्स या कंडीशन का आयद करना कि जिसके आयद करने की इजाज़त नहीं है। किस टर्म्स और कंडीशन को बिजनेस डील का हिस्सा बनाया जा सकता है और किसको नहीं बनाया जा सकता, इसकी कुछ डिटेल है, मैं अर्ज़ करता हूँ।
माशाल्लाह, यानी इसके हवाले से भी डिटेल्स हैं। आज तक तो ये था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी बाहमी रजामंदी से जो टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लिए जाएं और उसको लिख लिया जाए, साइन कर दी जाए, तो डील हो जाती है। तो इस्लाम ने कुछ शर्तों की ममानियत भी की है।
बहुत सारी शरायत ऐसी हैं
अच्छा
जिनकी ममानत की है और बाद शरायत तो ऐसी हैं जो रिबा के ज़िम्मे में आती हैं,
अल्लाह अकबर
और वो आपने जो इरशाद फरमाया कि लोग यही समझते हैं कि बस फरीकेन जिस पर राज़ी हों
जी
उसी पर मतलब कि सौदा होना
जी
चाहिए,
जी
और चीज़ें क्या करेंगी। तो असल मकसूद है निज़ाम बनाने का बिगाड़ से बचाना।
सही
एक मर्तबा एक साहब दारुलिफ्ता तशरीफ़ लाए और उन्होंने कोई बिज़नेस डील की थी, माशाल्लाह बड़ा खौफ खुदा उनके अंदर था। उस बिज़नेस डील करने में उनका सौदा कैंसिल हो गया, उन्होंने कोई प्लाट बेचा, प्लाट बेचने के बाद पार्टी को वो मुवाफिक नहीं आया और उस पार्टी ने वो वापस कर दिया। लेकिन मार्केट में जो एक उसूल है कि जनाब अगर प्लाट वापस किया जाए और जो बयाना होता है वो जब्त हो जाता है,
सही
तो मार्केट के उन उसूलों के तहत बयाना बेचने वाले के पास मौजूद था,
जी
वो बयाना उनके पास जब्त हो गया। अब वही साहब दारुलिफ्ता तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहीं से मसला सुना कि ये तो जुल्म है, जब डील ख़त्म हो गई तो बयाना तो वापस करना पड़ेगा आपको, इसके फ़ायदा उठाना जायज़ ही नहीं है। तो उन्हें बताया गया कि जनाब ये तो बिल्कुल आपको वापस करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि असल में हम दो अफराद ने मिलकर ये प्लाट ख़रीदा था, मेरा तो जहन बना हुआ है कि ये चीज़ मेरे लिए हलाल नहीं है, मेरा जो पार्टनर है वो नहीं मान रहा, अब मैं क्या करूँ। उसे यही कहा गया कि भाई आप उन्हें समझाएं, खौफ खुदा दिलाएं। 7-8 महीने के बाद वो अपने पार्टनर को लेकर आए दारुलिफ्ता में, उनके पार्टनर से गुफ्तगू हुई तो उनका मुद्दा यही था, वो बिल्कुल एक मॉडर्न किस्म के नौजवान थे, कि देखिए कि हम हमारे मार्केट में एक उसूल है, हम अपने उस मार्केट के उसूल के मुताबिक डील करते हैं, तो हमने कौन सी गलती की है, कि हम उस बयाने को जब्त करके किसी जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, हमने कोई गलती तो नहीं की। मैंने तो काफ़ी अंदाज से समझाया कि देखें, ये असल में जुल्म है, बिला वजह शरी, यानी आप किसी चीज़ के जब मालिक बनते हैं तो उसका सबब पाया जाना ज़रूरी है। आप खरीद फरोख्त के ज़रिए मालिक बने, उजरत के ज़रिए मालिक बने, आपको कोई गिफ्ट करे, यहाँ तो कोई सबब नहीं पाया जाता बयाने की जब्ती में, ये तो सरासर जुल्म है। तो बहरहाल काफ़ी वो तकाजा करते रहे, बिल आखिर फिर मैंने बुखारी शरीफ मंगवाई। बुखारी शरीफ मंगवाने के बाद एक हदीस उनके सामने रखी कि देखें, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक लोंडिया ख़रीदना चाही, और लोंडिया और ग़ुलाम जो ख़रीदे जाते थे, तो ख़रीदने के बाद अगर कोई उसे आज़ाद कर दे, तो अगर वो लोंडिया और ग़ुलाम मर जाती है, उसका कोई वारिस नहीं होता, तो जो आज़ाद करने वाला है उस लोंडी और ग़ुलाम का तरका उसे मिलता है। तो जो इस लोंडी को बेचने वाले थे, उनका नाम था, जिन्हें बेचा जा रहा था, बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये ग़ुलाम थी, लोंडी थी, तो इनके मालिक ने शर्त आयद की कि जी इसकी जो विला है, जो हक के तरका है, वो हम रखेंगे, इस बिना पर जो है हम आपको बेचेंगे, वरना हम आपको नहीं बेचते। हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए, लोगों को जमा किया होगा, मिंबर पर तशरीफ़ लाए और लाकर फरमाया, मा बालू अकवामिन यश्तरितूना मा लैसा फ़ी किताबिल्लाह, लोगों को क्या हो गया, ऐसी शर्तें अपनी डील में आयद करते हैं जो किताबुल्लाह में नहीं है। यानी इस्लाम ने उनकी तलकीन नहीं की है, ना उन्हें रवा रखा है, बल्कि जो इस्लामी तालीमात हैं वो शरायत इसके ख़िलाफ़ हैं। तो आपने फरमाया कि जो शर्त किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ हो या किताबुल्लाह की तालीमात के ख़िलाफ़ हो, अगरचे कि वो 100 शर्तें हों, उनका पूरा किया जाना ज़रूरी नहीं है। यानी उन लोगों की शर्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया। तो ये भी मतलब कि उनका तकाजा था, उस दौर का हो सकता है यही उर्फ हो, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये दर्स दिया कि जो शर्त इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ होगी बिजनेस डील में, उसको हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ये बात सुनने के बाद उनका जहन बना और काफ़ी मुतमईन हुए, और उसके बाद उम्मीद है कि उन्होंने इससे
माशाल्लाह
मतलब कि
माशाल्लाह।
बरात जाहिर कर दी होगी।
अब यहाँ तो हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए कि हमारे दारुल इफ्ता में किस अहसन अंदाज़ में तफहीम की जाती है, समझाया जाता है, मसाइल बताए जाते हैं। मैं तो तमाम ताजरान से, बिजनेसमैन से, बल्कि तमाम इस्लामी भाइयों से जो कुछ वो काम करते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वक्त निकाल कर दारुल इफ्ता तशरीफ़ ले जाएँ और अपने मामूलात ज़िंदगी, अपने बिजनेस के हवाले से, अपनी तिजारत के हवाले से मामलात रखें दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों के सामने।
मैं आपकी
जी
बात में कुछ इजाफा करूंगा।
जी
असल में बात यह है कि दारुल इफ्ता में आने वाले अफराद दो तरह का जहन लेकर आते हैं।
जी
बाज़ का जहन ये होता है कि जो हमारे जहन में है यही हमें जवाब मिले,
सही
और बाज़ का जहन ये होता है कि हम जिनके पास जा रहे हैं शरीयत का इल्म उनको है।
सही
डॉक्टर जब दवा लिख कर देता है तो क्या क्यों कैसे नहीं किया जाता, डॉक्टर
बिल्कुल
साहब ने लिख दिया कि
माशाल्लाह
यही दवा फ़ायदेमंद है, सारे टेस्ट हो गए,
सही
उस पर अमल किया जाता है। तो बाद अफराद वो आते हैं जो ये जहन लेकर आते हैं कि ये जो बयान कर रहे हैं दारुल इफ्ता में बैठकर, कुरान हदीस बयान कर रहे हैं, हमने इनको फॉलो करना है, और फिर वो सुनते हैं, अपनी खराबियों को दूर करते हैं। तो ऐसे अफराद ज़्यादा फ़ायदा
माशाल्लाह,
उठाते
यानी
हैं।
जब जाएं तो ये जहन बना के जाएं कि
बिल्कुल
कुछ सीखने जा रहे हैं,
जी
और इंशाल्लाह जो बताया जाएगा और उस पर अमल करेंगे, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो मायूस ना हो जो वतन से दूर है या इन शहरों से दूर हैं। टेलीफोन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दारुल इफ्ता में जवाब मिलता है, मकतूब भी आप लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों फतावे जारी हो रहे हैं और इस्लामी भाइयों की रहनुमाई की जा रही है। हुजूर, यहाँ एक सवाल बड़ा पैदा होता है, आपने बड़ा नाजुक टॉपिक छेड़ दिया है बयाने के हवाले से। ये तो एक ऐसा मार्केट का यूँ समझ लें उसूल बन चुका है, एक रिवाज बन चुका है। अब बज़ाहिर ऐसा भी होता है कि हमने कोई प्लॉट बेचा, उसने बयाना दिया, अब मार्केट नीचे हो गई तो वो प्लॉट छोड़ देते हैं।
क्यों छोड़ देते हैं? देखें, असल तो नुक्ता यही है, क्यों छोड़ देते हैं? जब एक डील हो गई
जी
तो ख़रीदने वाला प्लाट का मालिक हो गया,
ठीक
और
है,
बेचने वाले का हक ये है कि वो अपनी रकम वसूल करे।
पूरी वसूली करें
शरीयत के कानून के तहत किसी एक फरीक को अज़ खुद छोड़ने का इख्तियार ही नहीं
तो
है।
उसी डील में लिखा होता है ना हजरत के, अगर आप पैसे पूरे नहीं भरेंगे एट द
जी
टाइम ऑफ ट्रांसफर तो ये बयान आप रख लीजिए। अब वो
देखिए,
छोड़ देगा तो इसको तो नुकसान हो जाएगा, बयाना भी ना मिला, मार्केट भी नीचे चली गई।
आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है मुझे कि उसको छोड़ने का इख्तियार ही नहीं है।
ठीक है,
जब तक फरीकेन रजामंद ना हो उस बिजनेस डील को कैंसिल करने पर, कोई बिजनेस डील अज खुद कैंसिल नहीं हो जाती।
सही,
अगर फ्रीकेन किसी वजह से राजी हैं कैंसिल करने पर, तो फिर कैंसिल करने का मतलब ये है कि खरीदने वाले का वो प्लाट नहीं हुआ और बेचने वाले ने रकम नहीं देनी, बयाना बीच में कहाँ से आ गया?
सही। तो अब यानी ये आपकी बात समझ आ रही है कि ये उसूल दोनों तरफ से ही गलत हैं, कि छोड़ने का अख्तियार भी उसके पास उस डील में
जी
नहीं होना
बिल्कुल,
चाहिए और इसके पास बयाना जब्त करने का अख्तियार
इस
भी नहीं होना
पर
चाहिए।
कानूनी चाराजोई की जाए। जब आपने एक प्लाट खरीद लिया है, उसके कागजात आपके नाम ट्रांसफर हो गए हैं, तो प्लाट अब आपका है।
ट्रांसफर नहीं होते, बाज़ औक़ात बिजनेस एग्रीमेंट सिर्फ हुआ हुआ होता है।
बिजनेस एग्रीमेंट पर भी अथॉरिटी तो हासिल हो जाती है ना,
ठीक है,
सबूत तो हो जाता है।
ठीक है,
आप जाकर कानूनी चाराजोई करें कि जनाब मैंने इससे इसको प्लाट बेचा है, अब ये मेरी रकम नहीं दे रहा, उसे अपनी रकम वसूल करें।
यानी पूरे सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरत है। माशाल्लाह, मज़ीद आप इसकी कुछ असबाब इरशाद फरमा रहे थे।
बेफासद के हवाले से जो बड़ा अहम टॉपिक है, एक हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इरशाद हुआ कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व शर्तिन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै में, बिजनेस डील में किसी शर्त को लगाने से मना फरमाया है। यानी बिल्कुल एक फ्री होनी चाहिए खरीदो फरोख्त, कि जो खरीदे खरीदने के बाद उसको उस चीज़ से नफ़ा उठाने का पूरा पूरा इख्तियार हासिल हो।
सही,
आप कहेंगे जनाब ये चीज़ मैं रखूँगा, फलां को नहीं बेचना, मेरे भाई को बेच दो, इसमें मैं इतने अरसे रहूँगा, मुझे किराए पर दो। खरीदो फरोख्त के बाद तो वो चीज़ उसकी हो गई है,
सही।
उसे बिल्कुल पूरा पूरा इख्तियार दिया जाए।
नहीं हुजूर, आपने अभी हदीसे पाक बयान की, कहीं इससे ये माना तो हमारे नाज़रीन ना समझ लें कि हर शर्त फासिद है।
मैं थोड़ी देर बाद वजाहत करने जा रहा हूँ
जी
कि
जी
कौन सी शर्त ऐसी है जिसके अपनाने में कोई हर्ज
जजाक
नहीं
अल्लाह,
है।
जजाक अल्लाह।
एक और हदीस मुबारका, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बे में दो बे करने से मना फरमाया, यानी एक बिजनेस डील में दो डील करने से मना फरमाया। इसकी एक तफसीर हदीस की ये है कि वो ये कहे कि जी मैंने ये चीज़ आपको बेची इस शर्त पर कि आप अपनी चीज़ मुझे बेचो,
अच्छा,
तो एक दूसरे से मशरूत ना किया जाए। अगर आपको दो डील करनी है तो अलग अलग कर लें, एक
सही,
दूसरे से मशरूत ना करें। इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद और निसाई शरीफ की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद
सल्लल्लाहु
फरमाया
अलैहि
कि कर्ज़ और बे हलाल नहीं। यानी एक आदमी इस शर्त पर अपनी चीज़ बेचे कि फ़लाँ मुझे कर्ज़ा दे, ये हलाल नहीं है, बल्कि इसके बड़े सख्त अहकाम हैं। अब कौन सी शर्त जो है वो गलत है और कौन सी शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सही है, यूँ समझिए कि वो शर्त जो मकासिद एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ हो।
सही।
मिसाल के तौर पर जनाब आप ये चीज़ ख़रीद रहे हैं और इस चीज़ के आप ही मालिक बनेंगे, कोई ये शर्त लगा दे कि जी मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ और इसका मैं ही मालिक बनूँगा, खरीदो फरोख्त का तो मकसद ही ये है,
सही
ये शर्त तो मकासिदे अकद के उस एग्रीमेंट के मुताबिक है, इसमें
सही
कोई हर्ज नहीं है। तो जो शर्त मुक्तदाए अकद एग्रीमेंट के जो मकासिद हैं उसके खिलाफ हो और जो फरीकेन हैं खरीदने और बेचने वाले, उस शर्त के ज़रिए इन दोनों में से किसी एक का फ़ायदा हो, ऐसी शर्त फासिद है।
ठीक है,
ऐसी शर्त अगर किसी बिजनेस डील में दाखिल कर दी गई तो वो गुनाह का काम है, उससे सौदे पर फसाद वाक़ होता है और वो सौदा, वो डील गैर शरी हो जाती है। अब मैं हर चीज़ की थोड़ी सी वजाहत करता हूँ।
जी इरशाद,
पहला नुक्ता तो ये कि जो बिजनेस डील की जाए और उसमें कोई ऐसी शर्त रखी जाए कि वो डील ही उसका तकाजा करती है, उसका पाया जाना ज़रूरी है, तो ऐसी शर्त में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि ख़रीदने वाला ये कहे कि जनाब आप जो चीज़ मुझे, मैं जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ ये मैं अपने नाम करवाऊँगा, उसे इख्तियार है वो अपने नाम करवाए, या वो ख़रीदने के बाद ये कहे कि मैं तो अपने भाई का नाम करवाऊँगा या अपने चचा का नाम करवाऊँगा, तो ऐसी शरायत लगाना कोई ख़िलाफ़ नहीं है।
यानी उसके इख्तियार में है, वो किसी के नाम
जी
नहीं
हाँ,
करवाए।
बिजनेस
प्रॉपर्टी डील्स में ऐसा बाज़ औक़ात हुज़ूर शरायत आयद की जाती हैं कि जो प्लॉट ख़रीद रहा है सिर्फ वही अपने नाम करा सकता है, अपने इख्तियार से किसी और के नाम नहीं करा सकता, तो ये शर्त भी फिर गलत
ये
हो गई।
शर्त गलत है बिल्कुल।
ठीक,
इसी तरीके से तो ये यानी जो शर्तें जायज़ हैं वो बयान हो रही हैं,
जी जी
पांच ऐसी शर्तें जो जायज़ हैं।
जी
एक ये कि वो शर्त मुक्तदाए अकद के उस बिजनेस डील के मकासद के मुताबिक हो,
ठीक
वो
है,
जायज़। दूसरी ये है कि वो मतलब ज़रूरी तो नहीं है उसके लिए लेकिन वो मुनासिब है। मिसाल के तौर पर सौदा बेचने वाला ये कहे कि जनाब ज़मानत लेकर आओ, मैं तुम्हें उधार बेच रहा हूँ, तुम पैसे दोगे या नहीं दोगे, या तो रहन कोई चीज़ रखवाओ या किसी कफील को लेकर आओ। तो डील इसका भी, ये चीज़ डील के मुआफिक है,
सही,
इसका जो है ना वो लिहाज किया जाना भी बेहतर है। तो अगर ये शर्त आयद कर दी जाए इसमें भी कोई हर्ज नहीं है।
सही,
तो आम तौर पर तो बेचने वाला अपने पैसों के ताल्लुक से, कि उसे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, रहन लेता है या किफालत
कोई गारंटी ले
लेता है,
लेता है।
गारंटी लेता है
ठीक है,
कि शख्स की। लेकिन बसा औकात ख़रीदने वाले को भी इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है
सही फरमा रहे
कि
हैं।
वो जो चीज़ ख़रीद रहा है चोरी को तो नहीं है,
ठीक,
ये आदमी गलत तो नहीं है बेचने वाला, तो वो बेचने वाले के ताल्लुक से भी
किसी से गारंटी लेता है।
गारंटी लेता है, अगर ये शर्त भी सही है।
ठीक, यानी दोनों तरफ से गारंटी ली जा सकती है।
जी हाँ। तीसरी किस्म शर्त के हवाले से ये है कि शरीयत ने उसकी इजाज़त दी हो। ऐसी शर्त में एक शर्त है ख़यार शर्त,
सही
ये फ़िक्हे इस्लामी का एक पूरा चैप्टर है।
सही,
बड़े चंद अल्फाज में इसकी वज़ाहत करूँगा, वरना तफसीलात तो अपने मकाम पर हैं और आज हमारा मौजू नहीं। ख़यार शर्त ये होती है कि एक आदमी एक चीज़ ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद चूंकि ये हुक्म है कि वो सौदा डन हो जाता है और काबिल वापसी नहीं होता जब तक दोनों राज़ी ना हों, वो चाहता है कि मैं इसको एक दो दिन इस्तेमाल करूं, इसको देखूं, परखूं, इसको ले जाकर मशवरा करूं। और बेचने वाला यूं ही बग़ैर किसी डील के देने के लिए तैयार नहीं होता, वो
सही
कहता है मुझसे ख़रीद लो, उसके बाद ले जाओ, पसंद ना आए तो दूसरे दिन वापस कर देना।
सही है,
ये शर्त लगाना भी दुरुस्त है,
सही,
इसे ख़्यार शर्त कहते हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हब्बान बिन मुनक़िस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। बहुत सीधे साधे सहाबी थे, और ये जब कोई चीज़ ख़रीदते कोई डील करते तो अक्सर धोखे का शिकार हो जाते, या महंगा ख़रीद लेते या घटिया चीज़ ख़रीद लेते। तो इन्होंने अपना माजरा आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई चीज़ ख़रीदो तो यूँ कह दिया करो, ला खलाबता, भाई कोई धोखा नहीं होगा और मुझे 3 दिन तक के लिए इख्तियार होगा, मैं 3 दिन तक इसको मतलब के अपने अज़्ज़ा अहिब्बा से मशा करूँगा, इस चीज़ को देखूँगा, पसंद ना आए तो वापस कर दूँगा।
सही,
तो अगर ये शर्त आयद कर दी जाए कि 3 दिन का इख्तियार है, 3 दिन से ज़्यादा का इख्तियार जायज़ नहीं है, बस 3 दिन तक उसको मतलब के परखा जा सकता है, ये शर्त भी शरीयत ने एक्स्ट्रा तौर पर, इजाफी तौर पर इसकी इजाज़त दी है, ये शर्त भी दुरुस्त है।
जिसको मनी बैक गारंटी भी हमारे यहाँ कहते हैं,
जी
मनी बैक गारंटी भी हमारे यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आप 7 दिन इस्तेमाल कर लें, 5 दिन इस्तेमाल कर लें, अगर पसंद ना आए तो वापस दे के पेमेंट ले जाएं।
मैंने अर्ज़ किया कि जो कवानीन शरीयत हैं, जो फुकहा ने मुफ्ता भी जो अकवाल बयान किए हैं, उनकी रूह से सिर्फ 3 दिन की इजाज़त है, 3 दिन से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। चौथी शर्त यह है कि ऐसी शर्त हो जिस पर उर्फ भी जारी हो गया हो, लोग उस शर्त को अपनाते हों और शरीयत से भी ना टकराती हो। जैसा कि बयाने वाली जो शर्त है ये शरीयत से टकराती है, ये जुल्म है,
ठीक है,
किसी के माल को बिला वजह शरी हासिल करना है। मिसाल के तौर पर बेचने वाला इस शर्त पर चीज़ बेचता है कि अगर ये ख़राब हो गई तो 1 साल तक 2 साल तक मैं इसको बना कर दूंगा, जिसको हमारे यहाँ गारंटी या वारंटी कहा जाता है,
जी,
ये शर्त भी दुरुस्त है। अगर बेचने वाला इस शर्त पर बेच रहा है, ख़रीदने वाला तकाज़ा करता है कि जनाब ये शर्त पाई जा रही है आपके यहाँ, पाई जा रही है तो मैं ख़रीदूँगा वरना नहीं ख़रीदूँगा, ये शर्त ऐसी है जिस पर उर्फ जारी है और शरीयत से भी नहीं टकराती, तो इस किस्म की शर्त वारंटी वाला की शर्त भी जायज़ है।
तो वारंटी की कोई मुद्दत भी होगी? आजकल तो लाइफ टाइम वारंटी वाली चीज़ें भी मिलती हैं।
नहीं ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम वारंटी कोई भी कंपनी नहीं देती। ये होता है कि जी हम सस्ती सर्विस कर देंगे, यूँ कर देंगे, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इसके
जी
अंदर,
जी जी जी
फरीकन जिस पर राज़ी हूँ।
पांचवी शर्त,
पांचवी शर्त वो है कि जो शर्त तो गलत है लेकिन उसकी वजह से सौदे पर, डील पर कोई असर नहीं पड़ता। सवाब और गुनाह का जो मामला है और मिलके खबीस होने का और नफ़े के हराम होने का जो मामला है वो नहीं आयद होता। वो ये है कि शर्त ऐसी लगाई है जिसका फ़ायदा ना ख़रीदने वाले को है ना बेचने वाले को है।
अच्छा,
यानी ख़रीदने वाला ये शर्त लगाए कि जनाब मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ लेकिन आप मुझे कर्ज़ा देंगे, इसका फ़ायदा इसको पहुँच रहा है, उसको कर्ज़ा मिलेगा। या बेचने वाला ये शर्त लगाए कि जनाब मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ लेकिन 2 महीने इसमें खुद रहूँगा बेचने के बाद, तो इसका फ़ायदा इसे मिल रहा
ये
है,
तो गलत शर्त
ये
हो गई।
गलत शर्त है।
ठीक है,
अगर शर्त ऐसी है कि उसका फ़ायदा ना ख़रीदने वाले को मिल रहा है ना बेचने वाले को मिल रहा है, तो ऐसी शर्त लगाना लघु होगा। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई जानवर बेचा, कहा कि जनाब ये बड़ा मुझे जानवर पसंद है और मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, मेरी आंखों के सामने रहे तो अच्छा है, तो मैं इसे किसी को बेचना नहीं। तो ये शर्त तो लघु है, इसका एतबार नहीं किया जाएगा, लेकिन इस शर्त की वजह से ये डील गैर शरई नहीं होगी, इस पर जो है नफ़े पर असरात ज़ाहिर नहीं होंगे, ये शर्त लग करार पाएगी।
सही,
तो ये पांच शर्तें हैं जिनके पाए जाने पर बिज़नेस डील जो है वो गलत नहीं होती।
ठीक है
अब मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करूँगा शर्त फासिद की तारीफ़।
जी।
शर्त फासिद वो शर्त है जो मुक्तदाए अक्द के ख़िलाफ़ हो, मकासिदे डील के ख़िलाफ़ हो, और फरीकेन में से किसी एक का नफ़ा, किसी एक को उससे नफ़ा मिल रहा हो। ऐसी शर्त आयद करना शर्त फासिद है। जिस डील में ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन आयद की जाए वो डील गैर शरई हो जाती है। इसकी मिसाल ये है,
अब
कोई
आप नाजायज शर्तें
जी
बयान
जी
जी जी
नाजायज शर्तें बयान कर रहा हूँ कि दुकान बेची कि जनाब इसको हम खुद किराए पर रखेंगे, या हम बिला किराया इतने महीने तक खुद रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई कपड़ा ख़रीदा कि जनाब जो बेचने वाला है वो इसको सीकर भी देगा। इसी तरीके से ये शर्त लगा दी कि जनाब इस शर्त पर मैं ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ कि आप मुझे कर्ज़ा देंगे, या मैं आपकी ये चीज़ ख़रीदता हूँ आप मुझे फ़लाँ चीज़ गिफ्ट करें। तो ये वो शर्तें हैं जिनमें फरीकेन का नफ़ा है, फरीकेन को इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है, कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हो रहा है। तो ये शर्तें बिज़नेस डील के साथ लगाना, ये शर्तें शरायते फासिदा हैं, ये गलत शर्तें हैं, शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है।
जज़ाकअल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर, आज आपने माशाल्लाह बेफासिद के हवाले से हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई, जायज़ शर्तें भी बयान फरमाई, नाजायज़ शर्तों के बारे में बताया। तो क्या बेफासिद का मौजू आज हम कंप्लीट कर चुके हैं?
आज हमने सिर्फ बेफासिद के दो असबाब पर गुफ्तगू की
अच्छा
कि जो माल ख़रीद रहे हैं वो उसके डिलीवरी मुमकिन हो, काबिल तस्लीम हो, गैर मकदूर तस्लीम ना हो, और दूसरा ये कि किसी भी बिज़नेस डील में शर्त फासिद ना पाई जाए। ये सिर्फ दो असबाब बयान हुए किसी बे के फासिद होने के, और बहुत सारे असबाब अभी बाकी हैं।
तो हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह शुरका भी मौजूद हैं, जामियतुल मदीना के तलबा भी हैं, फैज़ान मदीना में आने वाले इस्लामी भाई भी हैं। तो आइए इनसे भी सवाल लेते हैं इस मौजू से मुतालिक। जी हुजूर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम
वालेकुम
अस्सलाम
सलाम।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आपकी आज की गुफ्तगू से एक सवाल जहन में आया था कि आपने फरमाया कि फ़रीकैन में अगर किसी मामले में कोई डील हुई और उसमें जो बयाना तय हुआ, तो वो जो जब वो बे अगर किसी वजह से ख़त्म हो जाती है तो लाजिम है कि वो बयाना जो है जो इसने बेची है चीज़ तो ख़रीदने वाले को वापसी कर दे, कि इसलिए इसके लिए यह बयाना रखना जायज़ नहीं है। तो इस वजह से अब चूँकि बे हुई थी, इसमें जो बेचने वाला है उसने भी कुछ अर्सा जो है अपनी चीज़ उसकी मिल्कियत में दे रखी थी, लेकिन अब किसी वजह से ये बे जो है ख़त्म हो गई, तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो बयाना हुआ था वो दोनों फ्रीकैन मतलब उसको बर्दाश्त कर लें कि आधा आधा, जैसे 5 लाख बयाना हुआ था तो 2.5 लाख जो है वो ख़रीदने वाला उसको बर्दाश्त नुकसान कर ले और 2.5 लाख बेचने वाला कर ले, ताकि वो दोनों पर मतलब किसी पर भी भार ना हो।
जी हुजूर, इरशाद फरमाए इस हवाले से।
देखिए, आपके सवाल का जवाब में मैं यह अर्ज़ करूँगा कि जो शख्स बयाना ले रहा है, जब्त कर रहा है, वो अगर ये दावा करे कि 2.5 लाख नुकसान मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो किस चीज़ का नुकसान, उसे क्या नुकसान हुआ? जब बिज़नेस डील ख़त्म हुई तो उसकी चीज़ उसे वापस मिल गई, तो उस चीज़ के बदले में जो रकम दी गई थी इसका वापस किया जाना ज़रूरी है, वाजिब है। जब वो चीज़ उसने ख़रीदी नहीं तो इसकी रकम वापस मिलेगी उसे। तो ये तो एक सोच है सिर्फ कि जनाब आधा नुकसान मैं बर्दाश्त करूँगा। हाँ, ये है कि वो शायद ये कहना चाह रहा है कि मैं 5 लाख के बजाय अब 2.5 लाख रुपए तुमसे वसूल करूँगा। तो ये दावा तो समझ में नहीं आता कि वो ये कहे कि मैं नुकसान बर्दाश्त करूँगा। हाँ, उर्फन उर्फ आम में लोग यही है कि बड़ी रकम के बजाय छोटी रकम पर अगर वो सब्र कर लें और उसी पर किफ़ायत कर लें तो ये एक अलग बात है, लेकिन असल मकसद और सबब यह है कि शरीयत ने आपको 1 रुपया भी बिला वजह शरी लेने की इजाज़त नहीं दी, एक आने की भी इजाज़त नहीं है, तो ना 2.5 लाख और ना 5 लाख, किसी की भी इजाज़त नहीं है। बल्कि सिर्फ बयाने की हद तक नहीं है, ये जो सोच है नुकसान रिकवर करने की, ये कई और चीज़ों में भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसी ने यान बेचा, यान की कोई लाट बेची, उस वक्त मार्केट चल रही थी 4,000 रुपये के हिसाब से।
सही।
अब इनकी बिजनेस डील किसी वजह से कैंसिल हो गई, लेकिन मार्केट चल रही थी 3,500 के हिसाब से, बयाने का कोई मामला नहीं है।
सही।
तो वो पार्टी जिसको माल वापस किया जा रहा है, उसका तकाजा ये होता है कि जनाब आप डिफरेंस मुझे देंगे।
सही।
तो किस बात की डिफरेंस भाई, अगर तो आप इस डील को बरकरार रखते हैं तो जिसने ख़रीदा है वो इसकी कीमत देगा, इसका पाबंद है वो, और अगर आप इसको फस्क करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल फस्क होगी। किसी किस्म का डिफरेंस कोई चीज़ नहीं है शरीयत में, ये सरासर सूद है। बिला वजह शरीक किसी से माल का तकाजा करना है, ये मतलब कि जुल्म है। तो डिफरेंस के मामलात हों, वसूल करने के या बयाने के मामलात हों, इसकी कतन शरीयत में इजाज़त नहीं है।
आपने बेफासिद के ना होने की जो वजूहात बयान की, उसमें एक वजह यह भी थी कि किसी को, मुसलमानों को आपस में झगड़े और नुकसान से बचाया जाए। आपने ये तो फरमा दिया कि 4,000 की चीज़ अब 3,500 की हो गई, वो वापस कर दे, तो अब ये बेचने वाले का नुकसान नहीं है कि 3,500 में वापस
कर दे? मैंने ये नहीं कहा है कि 3,500 में वापस कर दे
जी,
मैंने ये कहा है कि जिस वक्त चीज़ खरीदी, खरीदते ही खरीदने वाले की मिल्क में चली गई,
ठीक है,
बेचने वाले का ये तकाजा मतलब ये हक है कि वो अपनी रकम वसूल करे।
सही है।
तो अगर ये सौदा नहीं करना चाहते तो इसको एज इट इज़ ख़त्म कर दें, चीज़ के मालिक के पास आ जाए, और अगर उसकी कोई रकम ली भी हो तो वो वापस कर दी जाए। ये बिल्कुल एक हटकर है, एक खिलाफ़ अकल है कि जब इस चीज़ की मार्केट गिर गई है और अब ये चीज़ मुझे मतलब कि महंगी पड़ेगी, शरीयत में इसकी कोई मतलब की गुंजाइश नहीं है। डिफरेंस नाम की कोई,
खरीदने वाले के लिए भी ज़रूरी है कि वो चीज़ ले और उसकी रकम दे, जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होगी डील ख़त्म नहीं होगी।
जब सौदा हो गया तो डील हो गई।
सही, बहुत अच्छी आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई मिली, और आइंदा सिलसिलों में हम बेफासिद के इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद इसकी जो शराइत वगैरह हैं और सूरतें हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे। यही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की बहार है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें जो नहीं मालूम होती वो सिखाई जाती हैं, जो जहनों में सवालात पैदा होते हैं उस पर रहनुमाई मिलती है। मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल के सिलसिलों में बहुत सारे उलूम घर बैठे हमें सीखने को मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जायज़ तरीके के मुताबिक खरीदो फरोख्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मालिक करीम हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।